लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कजाकिस्तान में संत पाप फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पाप फ्रांसिस आज मंगलवार को कजाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा शुरू कर रहे हैं। इटली के बाहर यह उनकी 38वीं प्रेरित यात्रा है। संत पाप ने मंगलवार सुबह 7:36 पर इटा एयरवेज से नूर सुल्तान के लिए प्रस्थान किया और करीब 6.5 घंटे की यात्रा कर कजाकिस्तान के समय अनुसार शाम 6:45 नूर सुल्तान पहुंचे। उनके साथ विमान में करीब 80 पत्रकार भी थे। यात्रा शुरू करने से पहले संत पापा फ्रांसिस ने 12 सितंबर को रोम स्थित मरिया मेजर महा के जगह जाकर अपनी यात्रा को रोम की संरक्षिका माता मरियम को समर्पित किया। नूर सुल्तान पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन में संत पापा फ्रांसिस के आदर में स्वागत समारोह सम्पन्न किया गया। स्वागत समारोह के बाद उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की तथा कजाक कंसर्ट हॉल में कजाकिस्तान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, नागर समाज के प्रतिनिधियों तथा राजनयिक कोर को संबोधित किया। मध्य एशियाई देश में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा का केंद्र बिंदु है विश्व नेताओं एवं परंपरागत धर्मों के धर्मगुरुओं के 7वें सम्मेलन में भाग लेना। बुधवार 14 सितंबर के दिन धार्मिक नेता मौन प्रार्थना में भाग लेंगे, जहां संत पापा फ्रांसिस प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे जो करीब 100 देशों से जमा हुए हैं। शांति के लिए धर्मों के महासचिव प्रोफेसर अजा करम के अनुसार पोप की उपस्थिति इस 7वें अंतर धार्मिक सम्मेलन की रूपरेखा को ऊपर उठाएगी। उनके अनुसार संत पापा एक ऐसे धार्मिक नेता के रूप में देखे जाते हैं जो नैतिक जिम्मेदारी पर स्पष्ट रूप से बोलते हैं और यह भी साफ तौर पर बतलाते हैं कि समुदायों को चंगा करने एवं तनाव दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 2 दिवसीय कांग्रेस के अंत में अंतिम घोषणा की जाएगी। कांग्रेस में भाग लेने के साथ साथ संत पापा कजाकिस्तान के कैथोलिकों को अपना सामीप्य एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। 14 सितंबर की संध्या नूर सुल्तान के एक्सपो ग्राउंड में संत पापा फ्रांसिस कैथोलिक समुदाय के साथ एक भव्य ख्रिस्त्याग समारोह का अनुष्ठान करेंगे। कजाकिस्तान में कैथोलिकों की संख्या इसकी कुल आबादी 19 मिलियन का करीब 1% है, जहां मुसलमानों की संख्या 70% और ख्रिस्तियों जिसमें रूसी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिकों की संख्या अधिक है 25% है। संत पापा फ्रांसिस बृहस्पतिवार को सदा सहायिका माता मरियम महागिरजा घर में देश के धर्मदक्षों, पुरोहितों, सेमिनरी के छात्रों एवं धर्म सामाजियों से मिलेंगे। कारागांडा के कैथोलिक सेमिनरी के रेक्टर फादर रूसलान रखीम बेरनो ने बताया कि स्थानीय समुदाय संत पापा का स्वागत अपनी भूमि में करते हुए धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए कजाकिस्तान में पोप फ्रांसिस की यात्रा हमारे छोटे कैथोलिक समुदाय कजाकिस्तान में हमारे छोटे झुंड के लिए अधिक तेज गति हासिल करने का अवसर है। संत पापा फ्रांसिस की कजाकिस्तान में प्रेरित यात्रा शुरू करने की पूर्व संध्या वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए आशा व्यक्त की है कि विश्व नेताओं एवं परंपरागत धर्मों के धर्मगुरुओं का 7वां सम्मेलन, जिसमें संत पापा भी भाग लेंगे, मुलाकात और संवाद का अवसर बन सकता है। उन्होंने परम धर्म पीठ एवं कजाकिस्तान के बीच निष्ठापूर्ण राजनयिक संबंधों को रेखांकित किया। विश्व स्तर पर आयोजित यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन समेत कई देशों में भयंकर युद्ध एवं तनाव जारी है। कार्डिनल परोली ने वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में बतलाया कि कांग्रेस ने अपने मॉडल के रूप में 24 जनवरी 2002 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा असीसी में बुलाई गई विश्व शांति हेतु प्रार्थना के दिन को लिया है ताकि लोगों के बीच संवाद, सद्भाव एवं सामंजस्य के लिए विभिन्न धार्मिक परंपराओं के सकारात्मक योगदान को पुष्ट किया जा सके। संत पापा की प्रेरित यात्रा का आदर्श वाक्य है शांति एवं एकता का संदेश वाहक। प्रतीक चिन्ह के रूप में एक कबूतर एवं जैतून की डाली है जो शांति का प्रतीक है। कार्डिनल ने कहा कि कांग्रेस की अंतिम घोषणा का मसौदा विश्व शांति एवं एक साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व पर दस्तावेज पर विशेष जोर देता है। यूक्रेन एवं विश्व के विभिन्न देशों में जारी युद्ध तथा संत पापा की प्रेरित यात्रा की विषय वस्तु शांति पर गौर करते हुए कार्डिनल परोली ने कहा कि युद्ध कभी भी अपरिहार्य घटना नहीं हो सकती, इसकी जड़ें मानव व्यक्ति के हृदय में है। जैसा कि कलीसिया के धर्माचार्य कहा करते थे, घमंड, अहंकार, अभिमान और लोभ से प्रेरित है। ऐसे हृदय कठोर होते और दूसरों के लिए नहीं खुल पाते। उन्होंने बतलाया कि पीछे हटकर आरोप प्रत्यारोप और धमकी को छोड़कर आपसी विश्वास के कारणों को दूर कर युद्ध को टाला जा सकता है। दुर्भाग्य से इन दिनों सुनने की क्षमता और अलग तरह से सोचने वालों के तर्क को समझने का प्रयास हर स्तर पर कम हो गया है। अतः उन्होंने आशा व्यक्त की कि कजाकिस्तान में होने वाला सम्मेलन मुलाकात एवं वार्ता का अवसर होगा। कजाकिस्तान एवं वैटिकन के बीच कूटनीतिक संबंध की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कार्डिनल ने कहा कि इसे दो शब्दों में लगातार और फलदायी कहा जा सकता है। उन्होंने गौर किया कि परम धम्म पीठ ने सभी सम्मेलनों में हमेशा सक्रिय रूप में भाग लिया है और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रतिनिधित्व किया है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान पहला देश है जिसने परम धम्म पीठ के साथ 1998 में द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया था। यह सितंबर 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा दौरा किया जाने वाला पहला मध्य एशियाई देश भी है। परम धम्म पीठ और कजाकिस्तान अभी भी एक साथ काम कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस कजाकिस्तान की अपनी यात्रा में वहां के स्थानीय कार्तिक समुदाय से भी मुलाकात करेंगे और वहां ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। कार्डिनल ने कहा कि वहां की कार्तिक कलीसिया अत्यधिक मूल्यवान है और एक अत्यंत विविध धार्मिक सांस्कृतिक परिदृश्य के भीतर एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कलीसिया देश के धन्यों से प्रेरित होकर साक्ष्य देने के अपने मिशन को जारी रखेगी। इस तरह सभी विश्वासी मिलकर एकजुट, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे।
संत पापा फ्रांसिस 14 और 15 सितंबर को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित होने वाले विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस के लिए आज मंगलवार को कजाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की कांग्रेस 3 साल में एक बार नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित की जाती है। कांग्रेस का इतिहास 2003 का है जब कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने संयुक्त राज्य में 11 दिसंबर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद धार्मिक तनाव और उग्रवाद के उदय की सीधी प्रतिक्रिया में और सन 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के असीसी की भावना नामक दूसरी बैठक के बाद विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की कांग्रेस 2003 में अस्तित्व में आई। 23 और 24 सितंबर 2003 के कांग्रेस में 23 देशों के 17 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। मंच मुख्य रूप से आतंकवाद और उग्रवाद के मुद्दों का मुकाबला करने पर केंद्रित था। वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कजाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्रालय के बहुपक्षीय सहयोग विभाग के निदेशक श्री दीदार तेमेनेव ने 7वीं कांग्रेस के महत्व की एक झलक पेश की। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मिशन दुनिया भर में अंतरधार्मिक और अंतरजातीय सद्भाव को और मजबूत करना है, खासकर इन चुनौतीपूर्ण समय में। दुनिया इस समय महान परीक्षणों से गुजर रही है और इस समय धार्मिक नेताओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे हमारे कठिन समय में राष्ट्रों के बीच, धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि धर्म लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कभी कभी राजनीतिक असहमति में धार्मिक तत्व शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश सातवीं कांग्रेस की मेजबानी के लिए उत्सुक है। पिछली 6 कांग्रेसों की तुलना में यह सबसे बड़ी कांग्रेसों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कांग्रेस में 50 देशों के लगभग 100 प्रतिभागियों का स्वागत करने की उम्मीद है। कांग्रेस प्रतिभागियों की संख्या के साथ साथ अपने विशिष्ट प्रतिनिधि मंडलों की गुणवत्ता में भी सबसे बड़ी संख्या को चिन्हित करेगा। बेशक इसमें संत पापा फ्रांसिस भी शामिल हैं। कांग्रेस में कई धर्मों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अन्य प्रतिभागियों में अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब, मास्को ऑर्थोडॉक्स धर्म प्रांत के बाहरी संबंधों के विभाग के प्रमुख एवं वोल्को लामस के प्रादि धर्माध्यक्ष अंतोनी, इसराइल के अश्केनाजी प्रमुख रब्बी डेविड लाओ, इसराइल के सेफर्डिक चीफ रब्बी जियाक योसेफ और यरूशलेम के प्रति धर्माध्यक्ष थियोफिलोस तृतीय, साथ ही हिंदू धर्म, सिंटोवाद, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और अन्य धर्मों के प्रतिनिधि मंडल भी कांग्रेस में उपस्थित होंगे। श्री टेमेनो ने कहा कि कांग्रेस ऐसी दुनिया में शांति का एक अनूठा संदेश देना चाहती है जहां धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है। उन्होंने नोट किया कि हाल के वर्षों में दुनिया में संघर्ष, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं सहित कई संकटों का अनुभव किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धार्मिक नेता आध्यात्मिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन सवालों को भी संबोधित करते हैं जो इस समय बहुत गंभीर है। श्री टेमेनो ने कहा कि कजाकिस्तान पूरे ग्रह के लोगों के लिए शांतिपूर्ण और सभ्य जीवन को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहा है। कांग्रेस शांति और स्थिरता के नाम पर वैश्विक अंतरधार्मिक संवाद के विकास में योगदान देगी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सामूहिक समाधान के लिए इस प्रतिबद्धता के माध्यम से कांग्रेस पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच आपसी समझ के विकास में योगदान देगी। कांग्रेस के प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतिम दस्तावेज तैयार करने की उम्मीद है। 15 सितंबर को नूर सुल्तान के स्वतंत्रता भवन में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की सातवीं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा और संत पापा फ्रांसिस कांग्रेस के लिए समापन भाषण देंगे।
संत पापा फ्रांसिस ने कजाकिस्तान की प्रेरितिक यात्रा के प्रथम चरण में वहां के राष्ट्रपति, राजनेताओं और नागर अधिकारियों से भेंट की। संत पापा ने उन्हें अपने संबोधन में कहा कि मैं इस देश में शांति, वार्ता की चाह और एकता के तीर्थ यात्री स्वरूप आया हूँ।
Il nostro mondo ne ha urgente bisogno. Ha bisogno di ritrovare armonia.
हमारी दुनिया को आवश्यक रूप से शांति की जरूरत है। उन्होंने एकता को कजाकिस्तान के एक प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र दुम्बारा से तुलना किया। उन्होंने कहा कि दुम्बारा, जैसे कि मैंने इसके बारे में जाना, इसका प्रयोग मध्यकालीन समय में गाथाओं और कविताओं के पठन पाठन के दौरान किया जाता था। विविधता में निरंतरता का यह प्रतीकात्मक लय आपके देश की इस स्मृति की याद दिलाती है कि वर्तमान तीव्र आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के बीच यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम उन बंधनों की अपेक्षा ना करें जो हमें उन लोगों के जीवन से पिरोता है जो हमसे पहले चले गए हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कजाकिस्तान की उस समृद्ध परंपरा का जिक्र किया जहां वे शुक्रवार की सुबह अपने पूर्वजों के लिए 7 रोटियां पकाते हैं। संत पापा योहन पॉलुस द्वितीय द्वारा कजाकिस्तान के तीर्थ यात्रा की याद करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उन्होंने इस देश को शहीदों और विश्वासियों की भूमि, निर्वासितों और नायकों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों की भूमि के रूप में परिभाषित किया है जो महिमामय संस्कृति के इतिहास, मानवता और दुखों को अपने में वहन करती है। उन्होंने कहा कि हम खासकर इस देश के कैद खानों और बहुतायत में हुए निर्वासनों को कैसे भूल सकते हैं, जो लोगों की प्रताड़ना को व्यक्त करती है। आपके दुख तकलीफ जिसका सामना आपने किया आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बने, जो आपको मानवीय गरिमा, प्रत्येक पुरुष और महिला की गरिमा और हर जातीय, सामाजिक तथा धार्मिक समूह को पूर्ण प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करे। स्थानीय कहावत एकता सफलता का स्रोत है, इसे उद्धृत करते हुए संत पापा ने कहा कि यदि यह सभी जगहों में सही है तो विशेष रूप से यहाँ लागू होती है, क्योंकि यहाँ 550 विभिन्न जातियों के समूह हैं, जो 80 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अपने ऐतिहासिक विभिन्नताओं, संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं के कारण वे एक अति विशेष संगीत समारोह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कजाकिस्तान को एक अद्वितीय बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक प्रयोगशाला बनाती है, जहां हम इसे एक मिलन के देश स्वरूप पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि विश्व के पारंपरिक धर्मों के नेताओं के सातवें मिलन समारोह में सहभागी होते हुए मैं यहाँ मिलन की संस्कृति के महत्वपूर्णता पर जोर देने आया हूँ, जिसे सभी धर्मों को अपनाने की जरूरत है। कजाकिस्तान का संविधान इस संदर्भ में सटीक सांप्रदायिक राष्ट्र है। संत पापा ने कहा कि शब्द कजाक का तात्पर्य स्वतंत्रता में एक साथ चलना है। स्वतंत्रता की रक्षा मुख्य रूप से अधिकारियों की मान्यता द्वारा नागरिक समाज में व्यक्त की जाती है, जो कर्तव्यों के साथ चलती है। इस संदर्भ में संत पापा ने कजाकिस्तान में मृत्युदंड के उन्मूलन की सराहना करते हुए विचारों, अंतःकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, जो हर व्यक्ति की ओर से समाज निर्माण में मददगार होता है। उन्होंने कहा, नागर अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य जन सामान्य की भलाई का ख्याल रखना है, जो लोकतंत्र के समर्थन में अभिव्यक्त होता है, जहां वे सबों की सेवा में अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। वास्तव में शासन करने वालों में विश्वास का आधार उनके शब्द नहीं, अपितु उनके प्रभावकारी कार्य होते हैं। संत पापा ने लोकतंत्र और आधुनिकता को शब्दों से परे होने की बात कही, जिसे लोगों के लिए ठोस कार्यों में परिलक्षित होने की जरूरत है। अच्छी राजनीति लोगों को सुनने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में होती है, जहां हम युवाओं, कार्यकर्ताओं और समाज के सबसे संवेदनशील लोगों के बारे में ध्यान रखते हैं। दुनिया के हर देश को भ्रष्टाचार से लड़ने की आवश्यकता है। यह वास्तव में लोकतांत्रिक राजनीति की एक प्रभावकारी शैली है, जो चरमपंथ, व्यक्तिगतवाद और लोक लुभावनवाद जैसे मामलों का सामना करती है, जो लोगों की स्थिरता और कल्याण को खतरे में डालती है। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी जोर दिया, जो कजाकिस्तान का केवल नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक चुनौती है, जहां अन्याय के कारण लोगों का संपूर्ण विकास नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति का मालिकाना हक कुछ एक लोगों तक ही सीमित है। यह सरकार के अलावे निजी विभागों का भी कर्तव्य है कि वे समाज के सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करें। संत पापा ने कहा, कजाकिस्तान एक विशेष भौगोलिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है और इस भांति युद्धों की रोकथाम में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वार्ता और मिलन की आवश्यकता पर बल देते हुए शक्तिशालियों का ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर जो युद्ध और अशांति के कारण हैं। उन्होंने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की आवश्यकता है, जो आपसी समझ और वार्ता में बढ़ते हुए शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकें। इसके लिए हमें समझ, धैर्य और वार्ता की जरूरत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।